राजन। अरे बलि महाराज, इसे में विचार कीजिए कि जब इनके तीसरे पग को रखने की बात आएगी वो कहाँ रखेंगे। चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। और हाँ, जब इस प्रकार से आपकी संपत्ति को वो हर लेंगे तो आप पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे राजन, जब आप अपनी संपत्ति खो बैठोगे तो अपने इस शरीर की देखभाल कैसे करोगे, अपने परिवार का पोषण कैसे करोगे, और जब आप अपने इस वक्तव्य की पूर्ति नहीं कर पाओगे जो आपने व्रत दिया है, जब आपका व्रत भंग हो जाएगा तब फिर आपको नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि तो ब्राह्मण को आपने वचन दिया है और आप वचनबद्ध हो, और वचन की जब पूर्ति नहीं कर पाओगे तो नरक में प्रवेश करना पड़ेगा। इस विषय में चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। और हाँ, मेरा तो प्रस्ताव आपके लिए यही है कि अनेक परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति को असत्य का सहारा लेना अनुमोदित है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, शास्त्र में वर्णन आता है कि जिन परिस्थितियों में असत्य का सहारा लेने पर इसका दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होता। और वो कहते हैं त्रिपूर्ण विवाह दृत्यर्थे प्राण संकटे। विवाहते समय किसी के साथ हास्यास्पद परिस्थिति में, जैसे विवाह के समय बोल दिया जाए कि वास्तव में ये तो बहुत बड़े एजेंट हैं, ये तो बहुत बड़े करोड़पति हैं, ये तो फलाना फलाना है, तो वास्तव में कई बार असत्य का सहारा लिया जाता है। तो वृत्ति अर्थे धन को प्राप्त करने के लिए कई बार असत्य का सहारा लेते हैं। प्राण संकटे जब प्राण पर बात आ जाए तब कई बार असत्य का सहारा लेते हैं। और गो ब्राह्मणात हिंसायाम नांद्रतम क्या जिगुप्सितम। गो गायों की रक्षा हेतु, ब्राह्मणों की रक्षा हेतु, और हिंसा के समय अपनी रक्षा के लिए नांद्रतम क्या जिगुप्सितम। इस प्रकार से असत्य का सहारा लेना गलत नहीं। इस प्रकार शुक्राचार्य कह रहे हैं। और कई बार लोग इस श्लोक को गंभीरता पूर्वक नोट कर लेते हैं और कहते कि ये बड़ा अच्छा बात बताया आपने कि ऐसी परिस्थितियों में असत्य का सहारा ले सकते हैं, ये शास्त्र द्वारा अनुमोदित है। लेकिन वास्तव में शुक्राचार्य अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस प्रकार से कह रहे हैं। और हमें यह समझना चाहिए कि शुक्राचार्य बलि महाराज को कह रहे हैं, राजन आप सब कुछ खो जाओगे तो आप अपनी देखभाल कैसे करोगे। लेकिन वास्तव में शुक्राचार्य को चिंता है आपकी, मैं नौकरी कर रहा हूं और आप सब कुछ उसको दे दिए तो फिर उसके बाद मेरा क्या होगा। शुक्राचार्य को स्वयं की परी है, वह स्वयं के पोषण के विषय में चिंताग्रस्त है और इसलिए वो कह रहा है मेरा क्या होगा। इस प्रकार शुक्राचार्य प्रामाणिक गुरु नहीं है। और इसके विषय में वर्णन आ रहा है, बलि महाराज ध्यान पूर्वक सुनते हैं उनकी बात को और कहते हैं बलिर एवं गृहपते कुलाचार्य न भाषितम तो इसमें भूताक्षरो राजन वाचा वही तो नृप। वर्णन आ रहा है कि बलि महाराज शांति पूर्वक विचार कर रहे हैं, अरे यहाँ पर बलि एवं गृहपति कुलाचार्य न भाषित। उन्होंने सुना, ध्यानपूर्वक सुना कि शुक्राचार्य के वक्तव्य क्या थे, लेकिन शुक्राचार्य की बातों को सुनकर बलि महाराज की प्रतिक्रिया क्या थी ध्यानपूर्वक देखिए। हम सभी को इस पॉइंट को बहुत गौर से देखना है क्योंकि हम सभी के जीवन में ये समस्या आएगी। किसका मार्गदर्शन प्राप्त करें, प्रामाणिक गुरु कौन है, किसका आश्रय प्राप्त करें। कलयुग में तो इतना बड़ा मार्केट है, उचित माल कहां पर मिलता है, प्रामाणिक क्या है, अप्रामाणिक क्या, कौन कैसे बता सके। इसलिए बलि महाराज क्या कर रहे हैं, तूष्णीम भूस्वाक्षरम राजन, उस क्षण के लिए बलि महाराज शांत हो गए हैं क्योंकि मननशील अवस्था में है, चिंतन कर रहे हैं। अरे शुक्राचार्य ने कहा कि बलि वामन देव को ये तीन पग मत दो, ऐसा क्यों कहा, चिंतन कर रहे हैं। अर्थात ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन के लिए स्वीकार करने से पूर्व कुछ चिंतन करे। शास्त्र बताते हैं कि पांच प्रकार के अधर्मी होते हैं और ऐसे अधर्मियों से हमको बचना है, नहीं बचे उनके चंगुल में, उनके वश में आकर हम फंस जाएंगे। धर्म बाध विधर्म स्यात्, विधर्म परधर्म और उपमा फल और आभास, ये पांच प्रकार के अधर्मी होते हैं। इसके विषय में हम आपको कुछ वर्णन करेंगे जिससे कि आप अपने जीवन में सावधान रहेंगे और प्रामाणिक कौन है इस बात की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो पहले होते हैं अधर्मी। अधर्मी अर्थात धर्म बाध अधर्म स्यात्, विधर्म अर्थात धर्म बाध, जो हमारे धर्म के पालन में बाधा बने तथा कथित धर्म के कार्य, इसे कहते हैं विधर्म। तो कई लोग आपको बताएंगे कि ये पूजा करना चाहिए, ये संस्कार करने चाहिए और इस प्रकार केवल महामंत्र का जाप उचित नहीं, तथा कथित धर्म के ही कार्य जो कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आत्मसमर्पण में बाधा बने, उसको कहते हैं विधर्म। तो इस प्रकार से लोग कई बार कुछ समस्या होती है तो ज्योति इच्छा के पास चले जाते हैं और ज्योति भी कहते हैं ये कीजिए वो कीजिए और उसी संगम में वो फंस जाते हैं और कृष्ण का आश्रय नहीं लेते। इसी प्रकार एक व्यक्ति ज्योति के पास चले गए, ये विधर्म का उदाहरण है। किस प्रकार हम तथा कथित धर्म का पालन करते हैं और वास्तविक कृष्ण धर्म से दूर चले जाते हैं। ज्योति को कहने लगे बड़ी समस्या है, शनि का प्रकोप हो गया मेरे जीवन में। तो ज्योति कहने लगा अच्छा शनि का प्रकोप हो गया कोई बात नहीं, आप मुझे 150 रुपए दे दें, एक बढ़िया हम यज्ञ संपन्न कराएंगे, शनि का प्रकोप दूर हो जाएगा। ज्योति ने कहा 150 रुपए मेरे पास नहीं है। ज्योति ने कहा कोई बात नहीं 400 रुपए निकाल दीजिए, एक बढ़िया यज्ञ करा देंगे, शनि का प्रकोप दूर हो जाएगा। ज्योति की 400 रुपए भी मेरे पास नहीं है, बोला अच्छा कोई बात नहीं 100 रुपए तो निकाल दी, 100 रुपए भी नहीं है ठीक है भाई 51 रुपए है क्या। ज्योति भी कहते हैं 51 रुपए भी मेरे पास नहीं है। ज्योति परेशान हो गया ये क्या चल रहा है, 25 रुपए है क्या तेरे पास। ज्योति क्षमा करे 25 रुपए भी नहीं है। ज्योति बोले भाई मेरे 11 रुपए निकालता है क्या, एक बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट यज्ञ कर दूंगा सब ठीक हो जाएगा। बोले 11 रुपए भी मेरे पास नहीं है। बोले आदमी है कि तू क्या है, 5 रुपए है क्या, 5 रुपए भी नहीं लाया। ये कमाल के यार 1 रुपए तो निकाल दे, 1 रुपए का मैं यज्ञ करता हूं ना, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। 54 है क्या भाई, बोला मेरे पास तो 54 भी नहीं है। ज्योति बोला रहे तेरे पास 54 भी नहीं है तो शनि भी तेरा क्या बिगाड़ सकता है भाई, क्यों तू इतना परेशान हो रहा है क्या तेरे पास बिगाड़ने लायक। अर्थात तो व्यक्ति परेशान होकर ज्योति के पास गया, लेकिन उसकी अपनी परेशानी भी तो है। उसकी परेशानी यह है कि वह खाली हाथ आया है। तो वास्तव में तथाकथित धर्म के जो मार्ग हम अपनाते हैं और हम विचार करते हैं कि ज्योतिष और आयुर्वेद ये दोनों में काफी मेलजोल है। आयुर्वेद से हमको चाहिए हेल्थ और ज्योतिष से चाहिए हमको वेल्थ। तो वेल्थ और हेल्थ, तो जब वेल्थ मिलता है तो पर्याप्त है, उसके बाद हेल्थ भी चाहिए उस वेल्थ को भोगने के लिए। इसीलिए आजकल इन दोनों का बड़ा बोलबाला है, लेकिन वास्तव में वास्तविक कृष्ण भक्ति कुछ और है। इसको कहते हैं विधर्म। दूसरा है परधर्म। परधर्म अन्य उदितर अर्थात दूसरों के द्वारा निरूपित कोई मार्ग उसको कहते हैं परधर्म, और उसके अंतर्गत अनेक आते हैं जैसे मानव धर्म, देश धर्म इत्यादि इत्यादि। और एक शुद्ध भगवत भक्ति इन धर्मों के सब परे है, और विविध प्रकार के जो मेडिटेशन और ध्यान लगाने की प्रक्रियाएं जिनमें भगवत तत्व या परमात्मा तत्व बिल्कुल सम्मिलित नहीं है, ये सभी मनगढ़ंत विचारधारा है, ये सभी परधर्म के अंतर्गत आते हैं, ये अधर्म का एक रूप है। धर्म आता है श्री प्रभुपाद कहते थे, कई बार लोग साइलेंट मेडिटेशन की बात करते हैं, बैठ कर आंख मूंद कर बिल्कुल ध्यान लगाओ, किस पर ध्यान लगाओ, किसी पर नहीं, और इस प्रकार एक घंटा अंधेरे कमरे में बैठने के बाद बाहर निकलने के बाद वो कहते हैं बहुत फ्रेश लग रहा है। तो प्रभुपाद कहते फ्रेश लगेगा ही, एक घंटा सोए हो बैठ के तो फिर क्यों फ्रेश नहीं लगेगा। तो वास्तव में साइलेंट मेडिटेशन ये सभी और धर्म के अंतर्गत आती है। एक इस प्रकार लाइब्रेरी में व्यक्ति मेडिटेशन की कुछ बुक खोज रहे थे, साइलेंट मेडिटेशन की बुक मिल गई, पूरा बुक पढ़ने लगे, पूरा बुक पूरा समाप्त किया, कुछ समझ में नहीं आया, ये बुक वापस लाइब्रेरी के शेल्फ में रखने के लिए गए, और जैसे साइलेंट मेडिटेशन का किताब वापस रखे अचानक ऊपर से दूसरा बुक धड़ाम से गिरा, सर पर गिरा, तो तुरंत उस बुक को खोला और जो पन्ना खुला उसमें लिखा था साइलेंट मेडिटेशन इज बोगस एंड नॉट फॉर दिस एज, और बुक के सामने देखा परफेक्शन ऑफ योगा बाय डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ थी, तो जो एक घंटे में दूसरा ग्रंथ पढ़ के उनको समझ में नहीं आया, केवल दो लाइन पढ़ के वो समझ गए कि वास्तविक ध्यान है ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, भगवान पर ध्यान लगाना ही वास्तविक मेडिटेशन है, वास्तविक ध्यान है। इसलिए परधर्म वो जो अन्यों के द्वारा निरूपित किया जाता है, वो कोई मनगढ़ंत धारणाएं होती है। और तीसरा होता है उपधर्म। उपधर्म स्तुपाखंडो दम्भो वा, उपधर्म के दो लक्षण होते हैं, वह वेदों के विरोध में होता है और ये मिथ्या अहंकार से प्रेरित होता है, और इसके अंतर्गत कई बार लोग स्वयं को भगवान घोषित करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हम भगवान हैं, हम भगवान बन सकते हैं। ये भी बड़ी भ्रांत धारणा है, जीव भगवान का अंश है और कभी भगवान नहीं बन सकता। इस प्रकार एक व्यक्ति एक बार एक सन्यासी हमारे मिशन के सन्यासी को कह रहे थे, मैं भगवान हूँ, सभी चारों दिशाओं में जो कुछ लोग हैं सबका नियंत्रण कर रहा हूँ। इस तरह से वो कई बातें कर रहे थे। कुछ समय के पश्चात उन्होंने हमारे जो वैष्णव सन्यास थे उनसे पूछा कि आपके मंदिर के प्रांगण में टॉयलेट है क्या कहीं। तो हमारे सन्यासी जी ने कहा, आप तो भगवान है ना, आप तो तीनों लोगों को नियंत्रित कर रहे हैं, तो क्या इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। हाँ, टॉयलेट तो ढूंढ रहे हो। तो बोला, देखो भाई, मजाक करने का मौका नहीं, अभी आप बताओ टॉयलेट किधर है। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ आप कौन हो, भगवान हो कि भगवान के दास हो। अरे बाबा, ये क्या आप बात लेके बैठ गए, टॉयलेट कहाँ बताओ ना, भगवान सब कुछ नियंत्रित करते हो ना, करो नियंत्रित इसको भी। बोले, नहीं बाबा, चलो मान लिया मैं भगवान का दास हूँ, ठीक है बताओ किधर है, जाओ उधर से जाओ, दाई ओर जाओ, मिल जाएगा, ठीक है। चले गए, जाके वापस आ गए, तो वापस आने के बाद कहने लगे, मैं भगवान हूँ। बोले, कमाल है, बोले निर्लज हो, जाते जाते एग्रीमेंट करके गए थे मैं भगवान का दास हूँ, अभी कैसे बोल रहे मैं भगवान हूँ। तो उसने कहा, वो मेरी लीला थी। तो वास्तव में लोग इस प्रकार से फंसाते हैं, और कई ऐसे कलयुग में लोग हैं जो इसको स्वीकार कर लेते हैं। किसी वस्तु का मार्केट तभी होता है जब लोग उसकी मांग करें, प्रोडक्ट तभी होता है जब मार्केट होता है उसका। अगर विविध प्रकार के ऐसे तथाकथित योगी अवतार बाबा इत्यादि हैं, वो इसलिए क्योंकि इसका डिमांड है। डिमांड क्यों है, क्योंकि सस्ते में लोग कुछ चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि सस्ते में हमको धार्मिक होने का टैग मिल जाए, जो हमको ये टैग दे देगा हम उसको स्वीकार कर लेंगे। तो परधर्मस्तु पाखंड बंद होगा। और चौथा है छल, शब्दबित छल। शब्दबित अर्थात जो शब्दों की हेरा फेरी करे, शब्दों की हेरा फेरी करके श्लोकों को तोड़ मरोड़ कर किसी भी निष्कर्ष को आपके समक्ष प्रस्तुत करते। और संस्कृत भाषा ही ऐसी है कि किसी भी प्रकार से उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है और उसे भी सिद्ध किया जा सकता है। अंधखंड गाले भी आप यदि संस्कृत में दो तो भारत में व्यक्ति सोचेगा कि ये बहुत ऊंची बात कर रहा है, क्योंकि संस्कृत की भाषा लोग जानते नहीं पूरी तरह और उसका बहुत दुरुपयोग किया जाता है। और इस प्रकार से शुद्ध शास्त्रों का भी गलत प्रयोग किया जाता है। भगवत गीता जैसे सुंदर शास्त्र का भी, वैष्णव शास्त्र को भी वह इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि भगवान का उसमें अस्तित्व है ही नहीं। तो इसको कहते हैं शब्द भी छल। एक बार ऐसे राजा थे, उनका एक मंत्री था, एक उनके पास एक पंडित था जो राजा को रोज अलग अलग प्रकार के मंत्र सुनाया करता था। एक दिन उसे राजा को मंत्र सुनाया, शुक्लाम मरगरम विश्विम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम विजाय सर्व विघ्नो प्रशांते। हे राजन, इस मंत्र का अर्थ बहुत बढ़िया है कि भगवान अपने भगवान के प्रतिनिधि गणेश जी सफेद रंग के हैं, सभी विघ्नों का वो नाश करते हैं उनकी सेवा करने पर। तो राजा ने कहा, ठीक है ये मंत्र तो ठीक है, लेकिन इससे कुछ अच्छा अर्थ है क्या? तभी दूसरा पंडित था, अरे राजन इससे अच्छा श्रेष्ठ अर्थ मेरे पास है। राजन का अच्छा क्या अर्थ है बताओ तो। कहने लगा, वास्तव में ये गणपति जी की आराधना नहीं कर रहा। शुक्लाम भैरव विष्णु ये श्लोक एक रुपए के सिक्का का वर्णन कर रहा है, एक रुपए का चांदी का सिक्का है ना उसका वर्णन कर रहा है। बोला अच्छा, वो कैसे? शशि वर्णम सफेद, चांदी का सिक्का सफेद होता है ना, तो इसलिए सफेद है वो। चतुर्भुजम, चतुर्भुजम क्या है? एक रुपए में चार चाराने होते हैं, तो ये चार चाराने के लिए चतुर्भुजम शब्द है। और प्रसन्न वदनम जायेत, यदि लक्ष्मी की पूजा करोगे, धन की पूजा करोगे और धन प्राप्त हो जाए सर्व विघ्नों को शांति, पैसा आ गया तो सारे विघ्न दूर हो गए और क्या। कैसा लगा ये अर्थ? राजा ने कहा जोरदार, ऐसा तो मैंने आज तक कभी कोई अर्थ सुना ही नहीं। कहां से आप अवतरित हुए हो भाई? और पहले वाले पंडित को कहा भाग जाओ यहां से, भगा दिया उसको। बेचारा घर गया, उसका बेटा जो पूछा, पिताजी आप वापस क्यों आ गए? बेटा ऐसा ऐसा हो गया। बेटे ने अच्छा, तो मैं उसको एक दूसरा अर्थ बता के आता हूँ। तो बेटा चला गया। बोले राजन, शुक्लाम मरगरम का नया अर्थ सुनना है क्या? वो एक रुपए का सिक्का का वर्णन नहीं करता, वो दही वड़े का वर्णन करता है। क्या बात करता है, दही वड़ा तो मुझे बहुत पसंद है, बताओ भाई वो कैसे? शशि वर्णन सफेद रंग का है ना। अभी देखिए, एक रुपए का सिक्का और दही वड़ा दोनों में अधिक सफेद कौन सा है? हाँ, दही वड़ा तो बहुत ही सफेद है। चतुर्भुजम, चतुर्भुजम का अर्थ क्या है? ब्राह्मण दही वड़ा खा सकता है, क्षत्रिय दही वड़ा खा सकता है, वैश्य दही वड़ा खा सकता है, शूद्र दही वड़ा खा सकता है। प्रसन्न वदनम जाए, सबसे बड़ी पूजा है पेट की पूजा, तो पेट की पूजा दही वड़े से की जाए तो सबसे बड़ा विघ्न क्या है? भूख, सर्व विघ्न उपशांत। जब खूब दही वड़ा खाओगे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे और तुम शांत हो जाएगे, संतुष्ट हो जाएगा। राजन का वाह 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 वाह, जय हो तुम्हारी, एक से बढ़कर एक पंडित आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो बच्चे ने कहा, मूर्ख राजा, चाहे कोई व्यक्ति अलग अलग प्रकार से आपको फंसा दे, लेकिन वास्तव में जो ओरिजिनल अर्थ है वही ठीक है। जो मेरे पिताजी ने आपको सुनाया था वही ठीक है। और ये भाषा ही ऐसी है कि कितना उसको तोड़ो मरोड़ो उतने ही वो अर्थ निकल जाए इसमें। इसलिए धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायम महाजनो येन कथा सकन्त। इसलिए शब्द भी छल, इसलिए छल की बहुत संभावना होती है। और इसलिए चौथा प्रकार का अधर्म है। और पांचवा है आभास, अर्थात अपने वर्ण और अपने आश्रम के कर्तव्यों को त्याग कर अन्य कोई आश्रम और वर्ण के कार्यक्रम को पालन कर ले, अपने जीवन में उतार ले। तो ये पांच प्रकार के अधर्म वर्णन करते हैं और इन पांच प्रकार के अधर्मों से हमें बचना है, हमें प्रेम की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए यहां पर गणी महाराज एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, वर्णना रहा है कृष्ण भूतवा क्षण राजन बहुत कृष्ण भूतवा। बलि महाराज शांत होकर विचार कर रहे हैं, शुक्राचार्य ने प्रस्ताव दिया है कि किस प्रकार से वामन देव की बातों को मत मानो, वामन देव की इच्छा की पूर्ति मत करो, इनके प्रस्ताव को ठुकराने के लिए मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्या मुझे इनकी बातों में आना चाहिए, क्या मैं इनकी बातों को पालन करूं, क्या मैं इनकी बातों में आ जाऊं, क्या ये मेरे वास्तविक उचित प्रामाणिक गुरु हैं, क्या यही गुरु का लक्षण है, ये तो मेरे कुल गुरु अवश्य हैं, लेकिन वास्तविक प्रामाणिक गुरु कभी भी अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आश्रय प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देता है, कृष्ण के चरण कमलों की ओर खींच के ले जाता है, ये गुरु के लक्षण होते हैं। क्षण राजन, इसलिए बलि महाराज कुछ चुप हो गए, शांत हो गए, मननशील हो गए। इसलिए हमें जीवन में कभी अंधाधुंध काम नहीं करना चाहिए, गुरु को स्वीकार करना, आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करना एक बहुत ही गंभीर विषय वस्तु है और इसकी विस्तृत जानकारी हमें होनी चाहिए। यदि मार्केट में सोना खरीदने गए हो तो सोना कैसा दिखता है उसकी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो कोई सिंह दाना दे देगा और कहेगा यही सोना है तो क्या हम उसको स्वीकार कर लेंगे। इसलिए बलि महाराज का ये रवैया बहुत ही बढ़िया है और इससे हम बहुत कुछ उत्कृष्ट बातें सीख सकते हैं। और अब बलि महाराज शुक्राचार्य के इस प्रस्ताव को सुनकर शुक्राचार्य को उत्तर देते हैं और बलि महाराज शुक्राचार्य को क्या उत्तर देते हैं और उस उत्तर को सुनकर शुक्राचार्य की क्या प्रतिक्रिया होती है और उसके पश्चात वामन देव और बलि महाराज के बीच क्या आदान प्रदान होते हैं, बलि महाराज किन महान विपत्तियों में डाले जाते हैं और ऐसी विपत्तियों में पड़ने पर बलि महाराज किस प्रकार से अपनी महान सहनशीलता का प्रदर्शन करते हैं, इस विषय में हम कल चर्चा करेंगे। हमारी कथा का अंतिम दिन होगा कल शाम ठीक 4 बजे से कीर्तन आरंभ होगा, 4:30 से कथा आरंभ होगी। रविवार का दिन है, आप सभी समय पे आ जाएं और उसके पश्चात हम देखेंगे कि इस संपूर्ण कथा से हम 5 महत्वपूर्ण क्या शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। हम आप सभी के बहुत आभारी हैं कि भारी संख्या में आप लोग यहाँ इस कथा में आ रहे हैं। श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन कलकत्ता के भक्तों के द्वारा ये भागवत कथामृत का आयोजन किया गया है, आयोजकों के हम बड़े आभारी हैं और आप सभी के भी आभारी हैं कि आप इस कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत के श्रवण लाभ के लिए इतनी आतुरता व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर प्रश्न आंसर की कुछ व्यवस्था की गई है, उसके बाद बाहर यहाँ पर हो सकता है माला वगैरह बिक रही हो और आप माला लेकर जाएं और रोज माला पर जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से महामंत्र का जप करते हुए आप अपने घर को मंदिर बनाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। आइए सभी अब आरती में भाग लेते हैं और उसके पश्चात आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण पिताए गौर से मानंदे
नमः भगवते वासुदेवाय,
हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों का हम इस कार्यक्रम में भागवत के अष्टम स्कंध से बलि महाराज के प्रसंग का हम वर्णन कल कर रहे थे। इस प्रकार वामन देव भगवान श्री कृष्ण के अवतार बलि महाराज पर अपनी विशेष अनुकंपा प्रदर्शित करने प्रकट हुए। वामन देव अपने तेजस्वी रूप में गले में रुद्राक्ष की माला, देह पर जनेऊ, मृग कर्म का उत्तरिया और मूंग की मेखला से युक्त और सर पर जटाजूट धारण किए हुए उस यज्ञ शाला में प्रवेश करते हैं, जहाँ बलि महाराज भृगुकुल के पुरोहितों के साथ एक विशेष यज्ञ संपन्न कर रहे थे। अपने लघु चरणवृंद के पग से संपूर्ण धरातल को पवित्र करते हुए यज्ञशाला में प्रकट हो गए और अपने देह के तेज से उन्होंने वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को आकर्षित किया। बलि महाराज नम्रता पूर्वक वामन देव से प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार का दान वे प्राप्त करना चाहेंगे। वामन देव नम्रता पूर्वक उत्तर देते हैं कि वास्तव में मुझे केवल तीन पद की आवश्यकता है और कुछ नहीं। बलि महाराज उनकी बात सुनकर कुछ आश्चर्यचकित होते हैं। वामन देव का प्रस्ताव उनको हास्यास्पद लगता है और वो उनको उसके प्रस्ताव से हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर वामन देव संतोष की महिमा का बखान करते हुए अपनी इच्छा को पुनः व्यक्त करते हैं, राजन मैं केवल तीन पद भूमि प्राप्त करना चाहता हूं और कुछ नहीं। जब इस प्रकार वामन देव अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं तो उस समय शुक्राचार्य जी जो कि बलि महाराज के कुल गुरु हैं वह उस समय हस्ताक्षेप करते हैं, उच्च स्वर में वामन देव का खंडन करते हैं, उनकी निंदा करते हैं और बलि महाराज को चेतावनी देने का प्रयास करते हैं, राजन ये कोई सामान्य बटु नहीं, ये कोई सामान्य ब्राह्मण का पुत्र नहीं, ये साक्षात विष्णु है, वेश बदलकर हमारे बीच आया है, आपकी संपूर्ण संपत्ति ऐश्वर्य राज्य इत्यादि को हस्तगत कर शत्रु पक्ष को प्रदान कर देगा, इसलिए सावधान रहो, अपनी संपूर्ण संपत्ति देने के पश्चात आप कहीं के नहीं रहोगे। इस प्रकार शुक्राचार्य बलि महाराज को चेतावनी देते हैं और बलि महाराज अपने गुरु की चेतावनी को सुनते हैं, लेकिन चेतावनी को सुनने के पश्चात उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। बलि महाराज की प्रतिक्रिया का यहाँ वर्णन हो रहा है, कल इस विषय में हमने अंत में चर्चा की और श्लोक आता है बलिर एवं गृहपति कुलाचार्येण भाषित तस्मिन् भूत्वा क्षणो राजन् उवाहो गुरुम्। जब बलि महाराज ने शुक्राचार्य के प्रस्ताव को सुना तो शुक्राचार्य के प्रस्ताव को सुनकर बलि महाराज कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। तुझे भूत्वा क्षणो राजन् उवाच अवहितो गुरुम्, शांत हो गए, विचार करने लगे, मनन करने लगे और इसका तात्पर्य यह है जीवन में आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह गुरु का भली भांति जांच करे, गुरु कौन है इसके विषय में विचार करे, प्रामाणिक गुरु के लक्षण के ज्ञान को प्राप्त करे। और तब हमने पांच प्रकार के अधर्मियों का भी वर्णन किया, सामान्यतया लोगों की आंख में झूठ झूठ कर ऐ ऐसे लोग अपने धंधे को बढ़ाते हैं। और यहाँ पर बलि महाराज शुक्राचार्य के कुल गुरु होने का तो सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री विष्णु भगवान श्री वामन देव के प्रति अपने आत्मसमर्पण में उनके निर्देशों को बाधा बनने नहीं देते।
और अब बलि महाराज अपने विचारों को व्यक्त करेंगे।
बलि महाराज के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बलि महाराजों के इन विचारों को सुनकर हम अपने जीवन में बहुत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे जीवन शैली किस पर केंद्रित होनी चाहिए। हमारे जीवन के अनेक कार्यों की आधारशिला क्या होनी चाहिए, वे बलि महाराज के वक्तव्यों से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बलि महाराज कैसे हैं? शुक्राचार्य जी, मैंने तो यही सुना है कि हमारे प्रत्येक कार्य का एकमात्र लक्ष्य यह होना चाहिए, अनुकूल्यस्य संकल्पं प्रतिकूल्यस्य विवर्जनम्, जो कि शास्त्रों के सार को प्राप्त करने के लिए उपयोगी हो अनुकूल हो उसे स्वीकार करें, और जो कृष्ण के भक्ति के विरोध में हो उसका तिरस्कार करें। यहाँ पर वामन देव स्वयं आकर आग्रह कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, तीन पग भूमि मांग रहे हैं। तो मेरे विचार में किसी प्रकार से धर्म अर्थ और काम मोक्ष में ये बाधा नहीं बन रही। और इसके साथ साथ विचारणीय बात यह भी है कि हम प्रहलाद महाराज के वंशज हैं, मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूँ। अरे, इतने महान कुल में मैंने जन्म लिया है, अब मैंने इनको वचन दिया है कि मैं तीन पग भूमि दूंगा, तो ऐसी परिस्थिति में मैं अपने वचनों से विचलित नहीं हो सकता। मैं कोई सामान्य वंशक नहीं जो कोई एक बात कहे और दूसरा कार्य करे। सामान्य व्यक्ति और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा यदि मैं केवल अपने लोभ की पूर्ति हेतु इस प्रकार के निंदनीय कार्य करूं। महान व्यक्ति को ऐसे कार्य शोभा नहीं देते। और अब मैं वामन देव की इच्छा पूर्ति करने के लिए पूरी तरह अपना निश्चय कर लिया हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कार्य करते समय इन चार स्तरों पर कार्य करता है। जब भी हम जीवन में कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने के ये चार स्तर होते हैं। हमारे कार्य के पीछे जो प्रेरणा होती है उस प्रेरणा के ये चार स्तर होते हैं। और हमें चाहिए कि जीवन में हम निम्नतम स्तर से उठकर कार्य करने के उच्चतम प्रेरणा के स्तर पर पहुंच जाए। सर्वप्रथम स्तर है भय का। भय प्रेरणा का निम्नतम स्तर है। हमें अनेक बातों का भय होता है, अनेक लोगों का भय होता है, अनेक प्रकार के भयों से प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं, तो ये निम्नतम स्तर है। तो बलि महाराज कह रहे हैं, हे शुक्राचार्य जी, मैंने इस ब्राह्मण को वचन दिया है कि मैं इसको तीन पग भूमि दूंगा, और उसके पश्चात अपने वचनों से विचलित हुआ तो वास्तव में बहुत बड़े असत्य का मैं सहारा बनूंगा, बहुत बड़े असत्य का सहारा लूंगा, और इसके पश्चात मुझे बहुत भयंकर बुरी तरह से यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। धरती माँ ने इस बात की घोषणा की है कि बड़े बड़े शत्रुओं से मुझे इतना भय नहीं होता, बड़े बड़े चोर डकैतों से इतना भय नहीं होता जितना उनसे जो झूठ बोलते हैं और असत्य का सहारा लेते हैं। और वास्तव में नरक जाने से, दुख के सागर में निमग्न होने से, दरिद्रता से या अनेक प्रकार की यातनाओं
से इतना नहीं घबराता और यहाँ तक कि मृत्यु से भी इतना नहीं घबराता
जितना कि किसी ब्राह्मण को झूठ बोलने में या उसे प्रतिभ्रष्ट करने में। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ,
मुझे इस प्रकार के झूठ बोलने का बहुत भय है और इसलिए उसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा, मैं ऐसा दुष्परिणाम नहीं चाहता। तो वास्तव में भय हम सभी को जीवन में विविध प्रकार से प्रेरणा प्रदान करता है। किसी को नौकरी छूटने का भय होता है, किसी को पारिवारिक संबंध नष्ट होने का भय होता है, किसी को घर या रोटी कपड़ा मकान न प्राप्त होने का भय होता है, किसी को सामाजिक अपमान का भय होता है, विभिन्न प्रकार के लोगों को विभिन्न प्रकार का भय होता है। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से समाज इस भय से प्रेरित होकर कार्य कर रहा है और हम ऐसी भ्रांत धारणा पालन किए हुए हैं कि यह कार्य करने का बहुत ही उच्च स्तर है, लेकिन वास्तव में भय से प्रेरित होकर कार्य करना कोई उच्च प्रगतिशील समाज के लक्षण नहीं। इसलिए यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि भय निम्नतम स्तर है। बड़े महाराज भय के स्तर से उठकर दूसरे स्तर की बात करते हैं। बड़े महाराज कहते हैं कि देखिए, जो भी मैंने संपत्ति अर्जित की, चारों दिशाओं में जो भी भूमि मेरे पास है, मेरे संरक्षण में है, यह संपूर्ण भूमि मृत्यु के समय मुझसे छीन ली जाएगी। इतिहास में महान शक्तिशाली चक्रवर्ती नरेश हुए हैं, वह सभी मृत्यु पर्यंत अपने संपूर्ण संपत्ति को त्याग कर इस लोक से गए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मृत्यु के बाद इस संपत्ति को अपने साथ लेकर जाए। तो मृत्यु के समय जब इस संपत्ति को त्यागना ही है तो क्यों न इस संपत्ति का सदुपयोग किसी उच्च स्तरीय काम के लिए करें। जैसे कहा के पंडित कहते हैं, वरम त्यागो बिना चेते सती। अरे इस देह का विनाश तो निश्चित है, सन्निमित्ते वरम त्यागो, जब तक ये देह हमारे पास है बिना से न्यूनतम सती, भविष्य में तो इसका विनाश निश्चित है, तुम इसका अब सदुपयोग करें परोपकार के लिए। इसीलिए मृत्यु के पश्चात जब देह को छोड़ना ही है तो जब तक इन संपत्ति, जब तक इन देह अपने पास हो, तब तक कल्याण कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाए। सामान्य व्यक्ति बहुत कष्ट करके संपत्ति प्राप्त करता है, संपत्ति अर्जित करने के पश्चात वह से इतना आसक्त हो जाता है कि उस संपत्ति को गंवाने से घबराता है, उस धन के छीन लिए जाने से उसको घबराहट होती है, भयभीत रहता है, चिंतित रहता है, तनावग्रस्त रहता है। तो अक्सर श्री प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, जो कुछ भी हमें प्राप्त है भगवान ने प्रदान किया है, भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं, दो हाथों से हम क्या क्या अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, भगवान के असीमित हाथ में, उन असीमित भक्त कमलों से यदि भगवान ने कुछ छीनना चाहे तो दो हाथों से हम कितना उसको पकड़ कर रखेंगे। और फिर भगवान जब देना चाहे तो भगवान के असीमित हाथ में हमारे दो हाथ हैं, और असीमित अनगिनत हाथों से जब भगवान हमको कुछ देना चाहे तो हम दो हाथों में क्या क्या पकड़ेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन का ये कर्तव्य बनता है कि जब तक शक्ति हो, सामर्थ्य हो, अपने संपत्ति का, अपने देह का, अपने जीवन का, अपने प्राण का परोपकार के लिए प्रयोग करिए। अन्यथा चाहे कितना भी हम प्रयास क्यों न करें, विफलता निश्चित है। फिर बहुत वर्णन करते हैं कि लोग जब देखते हैं जब कोई वस्तु हम अपने इंद्र तृप्ति के लिए प्रयोग नहीं कर सकते तब जाकर भगवान का विचार करने लगते हैं, तब उसे भगवान के प्रयोग में किसी न किसी प्रकार से लगाने के विचार सोचते हैं। यदि भक्ति सिद्धांत स्तर सिखाकर वर्णन करते हैं कि एक व्यक्ति बाजार में गए, बाजार में जाके वह कुछ तुरमुरा लेकर आए और वह तुरमुरा अपने झोले में डालकर घर पर ला रहे थे। रास्ते में उनको भूख लगी तो वास्तव में उसने तुरमुरा को उन्हें भूख लगाना था। आप जानते हैं तुरमुरा बहुत ही हल्का होता है, लेकिन विचार किया अब कौन घर तक जाने तक प्रतीक्षा करेगा, भूख लगी है अब मेरे बैग से इसको निकाल कर मैं खा जाता हूं, ऐसा विचार करके बैग के अंदर हाथ डाला और तुरमुरा को अपने हाथ में लिया और वैसे अपने हाथ में लिया और तुरमुरा को खाने ही वाला था तभी वायु का एक झोंका चला और उसके हाथ में जो हल्का सा तुरमुरा था ही हवा में उड़ गया और जब हवा में उड़ गया तो वो जोर से चिल्लाया ओम गोविंदाय नमः, इसको मैं गोविंद को अर्पित करता हूँ। अच्छा जब हाथ से छूट गया तब फिर भगवान का स्मरण हुआ। इसी प्रकार से ये दिन ये प्राण ये संपत्ति चिरकाल तक हमारा साथ नहीं देंगी, इसीलिए हमें चाहिए इसका सदुपयोग करें। एक साधु महात्मा एक गांव में गए थे, गांव वालों में कलह हो रही थी, शांति का प्रस्ताव लेकर वे गए थे, शांति दूत बनकर वह साधु गए थे, गांव वालों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का वो प्रयास कर रहे थे। तो कलह के जितने भी पक्ष थे उनके सामने बैठे थे और उनमें से एक व्यक्ति को वो कह रहे थे देखिए जी, यदि आपके पास 100 एकड़ जमीन होती तो क्या आप 50 एकड़ जमीन अपने साथ वाले भाई को नहीं देते? तो गांव वाले ने कहा जरूर देता। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा दो आलीशान महल होते मकान होते तो उनमें से एक बड़ा मकान आप अपने दोस्त को नहीं देते? तो जरूर देता, क्यों नहीं देता। मान लीजिए आपके पास 10 बहुमूल्य हीरे होते इनमें से आप अपने मित्र को अपने सहयोगी को अपने पड़ोसी को 5 हीरे नहीं देते? हाँ जरूर देता। और मान लीजिए आपके पास 2 गाय होती इनमें से आप 1 गाय अपने पड़ोसी को नहीं देते? नहीं दूंगा बिल्कुल। ये क्या हो गया, अभी तक तो सब कुछ ना कह रहे थे दूंगा अभी क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास 2 गाय है इसलिए नहीं दूंगा, बाकी जो अपने वर्णन के वो तो मेरे पास है नहीं, तो लेने में क्या जाता है? जरूर लीजिए, जो हिमालय के पर्वत है उसे ले लीजिए, जो समुद्र में सागर में जल है वो आपका है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जितना धन है सब बांट दो, लेकिन मेरे जेब में जो 100 का सिक्का है 100 का नोट है वो मेरे पास रहे, उसके ऊपर आप किसी प्रकार से आक्रमण डालिए। अच्छा जो अपने पास है उसे बांटने का प्रयास करना है, क्योंकि कुछ समय के पश्चात यह संपत्ति या धन या ऊर्जा या प्राण सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो यही तर्क वामन देव के समक्ष अब बलि महाराज शुक्राचार्य को बता रहे हैं। संत वरम त्यागो विनाश्य नीति सती, एक होता है लाभ और एक होता है गेन, एक होता है क्षति या हानि, एक होता है लाभ। भौतिक जगत में जो भी भौतिक संपत्ति है उसका विनाश निश्चित है, और क्योंकि विनाश निश्चित है हमें चाहिए कि इस विनाश होने से पूर्व इससे कुछ लाभ प्राप्त करें। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि देखिए, क्योंकि विनाश निश्चित है, हानि निश्चित है, क्षति निश्चित है, इससे लाभ क्या प्राप्त होगा? हाँ, यदि मैं इस संपत्ति को दान में देता हूं तो उसके परिणाम स्वरूप मुझे यश प्राप्त होगा, और इतिहास में अनेक अनेक चक्रवर्ती नरेश हुए हैं जिन्होंने अपनी अपार धनराशि और संपत्ति को दान में लेकर असीमित मात्रा में यश और
मेरे मन में ये तीव्र इच्छा जागृत हो रही है शुक्राचार्य जी कि मैं ये तीन पद भूमि वामन देव को प्रदान कर सनातन काल के लिए यशस्वी बनना चाहता हूं। तो यह है इच्छा का स्तर। हम कार्य करते हैं और कार्य करते समय हमारे मन में कोई इच्छा होती है और हम उस इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन इससे एक ऊंचा स्तर होता है और वो है कर्तव्य का स्तर। अर्थात मैं भयभीत होकर कार्य कर रहा हूं, न मेरे मन में एक सकाम इच्छा है, न इंद्रवृत्ति की भावना से प्रेरित होकर मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये कार्य मेरा कर्तव्य है, मुझे ऐसा करना है, शास्त्रों द्वारा सम्मत है, इसलिए मैं करूंगा। एक्टिंग एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। तो कर्तव्य परायणता ये भी एक महत्वपूर्ण स्तर है और इच्छा और भय दोनों से ऊंचे स्तर पर ये है। तो वर्णन आता है, पृच्छ गीता में कहते हैं कि जहां तक दान का प्रश्न उठता है, दातव्यम इति यज्ञम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च यद्दानं सात्विकं स्मृतं। जब कोई याचक को दान देता है यह विचार करके दातव्यम इति यज्ञम कि इस याचक को दान देना मेरा कर्तव्य है, दीयते अनुपकारिणे और इसके बदले में तो हम इंद्र तृप्ति नहीं चाहते, कोई हमारा निधि स्वार्थ न हो, देश काले च पात्रे च और देश काल और पात्र का ध्यान रखते हुए याचक की पात्रता को मन में रखते हुए जब ऐसा दान दिया जाए तब दानम सात्विकम स्मृतम, इसको सात्विक दान कहते हैं। और प्रत्येक कार्य में ये कर्तव्य की भावना यदि हो तो ये भय और इच्छा दोनों से ऊंचे स्तर पर है और मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है कि हम धीरे धीरे हमारे कार्य करने की प्रेरणा के स्तर को कुछ आगे बढ़ाएं। पशु हैं जो निरंतर भय के स्तर पर काम करते हैं। यदि मानव समाज विज्ञान और टेक्नोलॉजी में इतनी प्रगति करने के पश्चात भी अपने प्रत्येक नागरिक के हृदय में से भय की भावना को दूर न कर पाए, भय का निवारण नहीं कर पाए, तो यह संपूर्ण मानव समाज पशु तुल्य ही तो हुआ ना। जो पशु कांजी हाउस में बंद रहते हैं, जो अपने मालिक के अधीन बंदी बने रहते हैं, जो निरंतर वन में भयभीत भटकते हैं, उनमें और बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े वायु विमानों में भ्रमण करते हुए द्वीप पादी पशु में क्या अंतर रह गया? तो केवल भय के आधार पर कार्य करना पशु तुल्य चेतना है। उस स्तर से ऊपर उठकर कुछ कर्तव्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करने चाहिए, ऐसे कर्तव्य शास्त्र में वर्णित है। शास्त्र क्या है इनकी जानकारी लीजिए, शास्त्र में मनुष्य के लिए कौन से कर्तव्य हैं इस विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। यह मानव समाज का एक लक्षण है और इसलिए देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। तो वास्तव में इसे कहते हैं सात्विक दान, जो देश काल और पात्र को मन में रखकर किया जाए। वर्णन है कि शिवजी पार्वती जी के साथ एक बार कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। श्री प्रभुपाद जी इस कथा का वर्णन करते हैं कि शिवजी किस प्रकार एक बहुत बड़े दानी थे, कर्तव्य के रूप में वो दान किया करते थे। पार्वती देवी ने शिवजी को कहा कि देखिए, हमारे जितने उपासक हमारे समक्ष आते हैं उन सभी को हम प्रचुर मात्रा में ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। हमारे सारे उपासक बड़े बड़े महलों में रहते हैं, कहां से कहां वो सभी पहुंच गए, हम अभी भी इस वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। अरे हमारे सारे उपासकों को हमने इतना कुछ घर सब कुछ प्रदान किया, मैंने आज तक आपसे कोई भेंट नहीं मांगी, लेकिन कृपा करके मेरी इस इच्छा की पूर्ति कीजिए, कम से कम रहने के लिए एक अच्छा सा घर हो जाए। तो शिवजी ने कहा इसमें कोई आपत्ति नहीं, और अपने अचिंत्य शक्ति से, योग शक्ति से शिवजी ने तुरंत एक सुंदर महल तैयार कर दिया। महल तैयार करने के पश्चात गृह प्रवेश के लिए अनेक अनेक साधु संतों को बुलाया। गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न हुआ, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करवाए गए, और उसके पश्चात सभी ब्राह्मणों को दान दिए गए। प्रचुर मात्रा में जो धनराशि थी वो सब बांटा गया, वितरित किया गया, जितना कुछ धन था वो सभी वितरित कर दिया। अब शिवजी विश्राम करने जाने ही वाले थे, तभी एक अंतिम ब्राह्मण आए और कहने लगे मुझे दान दीजिए। शिवजी कहने लगे जो कुछ धन था वो सब तो मैंने वितरित कर ही दिया, लेकिन फिर भी दान देना मेरा कर्तव्य है, तुम आए हो, अब मेरे पास केवल ये घर ही बचा है, इसी को दान में देता हूं। और उस घर को गृह प्रवेश के दिन शिवजी ने दान में दे दिया। कृष्ण भोपाल जी वर्णन करते हैं कि वास्तव में शिवजी बहुत कर्तव्य परायण थे और दान देने के वो एक आदर्श थे। तो यहां पर कर्तव्य के स्तर पर कार्य करने की बात कर रहे हैं, और इसलिए वर्णन आ रहा है कि भय से और इच्छा से उच्च स्तरीय है कर्तव्य के स्तर पर कार्य करना, लेकिन कर्तव्य के स्तर पर भी एक ऊंचा स्तर है, और वो है प्रेम का स्तर। जब हृदय में प्रेम की भावना हो, जब हम प्रेम से प्रेरित होकर अपने प्रेम के स्रोत को कुछ अर्पित करना चाहें, जो हमारे प्रेम के केंद्र हो, उनको संतुष्ट करने हेतु तो विविध प्रकार से प्रयास करें, उसमें जो संतोष की भावना होती है, उसमें जो सुख की भावना होती है, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता, वह केवल अनुभव करने वाली बात है। और प्राचीन मानव समाज में इस स्तर के ज्ञान का महान अभाव है, और श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम महापुराण के माध्यम से मानव समाज को इस बात का ज्ञान दिया जा रहा है, हे जीव, तू कृष्ण का एक आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, हम सभी कृष्ण के ही एक अंश मात्र हैं, और प्रत्येक जीव का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले। तो जब कृष्ण के चरणों के प्रति प्रेम की भावना जागृत होगी, ये कार्य करने का उच्चतम स्तर है, ये प्रेरणा का उच्चतम स्तर है, इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई स्तर नहीं हो सकता। और जब व्यक्ति प्रेम के स्तर पर काम करने लगता है, तो फिर उसके जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं, वह अपने हृदय के अंतःकरण में असीम सुख, शांति और आत्मीयता की अनुभूति करने लगता है। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज ऐसे उच्च स्तर पर कार्य करने का अवसर हम सभी को प्राप्त है। यदि हम बलि महाराज के इन शब्दों पर गौर करें तो वह कह रहे हैं प्रेम का स्तर। वह कहते हैं कि मैं इस वामन देव वधु को यहां पर पूरी तरह से परास्त कर दूंगा और ये धरती पर गिर जाएंगे या ये मेरा नाश कर देंगे, या तो मैं इनका विनाश करूंगा या ये मेरा विनाश करेंगे, और मेरे द्वारा मारे जाने पर, पराजित होने पर ये धरती पर गिर जाएंगे। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य देते हैं कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति भगवान श्री विष्णु को परास्त नहीं कर सकता, भगवान को केवल भक्ति के माध्यम से ही परास्त किया जा सकता है। तो बलि महाराज वास्तव में इस श्लोक में अप्रत्यक्षतः इस बात को इंगित कर रहे हैं कि मैं वामन देव को अपने हृदय के भक्ति के माध्यम से जीत जाऊंगा, अन्यथा भगवान को सामान्य भौतिक ऐश्वर्य और सामान्य भौतिक बल से जीता नहीं जा सकता। कृष्णा केवल प्रेम से ही पराजित होते हैं। तो ये कार्य करने का उच्चतम स्तर है। जैसे कोई माँ है, माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है तो एक प्रेम की भावना होती है। जब बच्चा रात के अंधकार में सोते हुए रोता है तो चाहे कितना भी देर क्यों न हो जाए, माँ उठेगी, उसकी देखभाल करेगी। रोते हुए बच्चे की ध्वनि सुनकर कभी माँ ये नहीं कहेगी रात का समय है, मेरा ड्यूटी नहीं है, अभी रोने दो, उसको सुबह देख लेंगे। नहीं, चाहे कितनी भी रात क्यों न हो जाए वो उठेगी, देखभाल करेगी। क्यों? क्योंकि प्रेम की भावना है। तो दो प्रकार के भार होते हैं, एक होता है गधे का भार और दूसरा होता है प्रेम का भार। गधा भी बोझा ढोता है और प्रेम के स्तर पर भी हम अनेक बार विभिन्न प्रकार के समस्याओं को झेलते हैं। रात को उठकर बच्चे की देखभाल करना वास्तव में समस्या है, लेकिन क्योंकि प्रेम की भावना है वो हम करते हैं। कभी घर पर ऐसी चर्चा नहीं होगी कि आज तुम्हारा ड्यूटी है, आज हमारा ड्यूटी है, और यदि रात को मुझे उठना पड़े तो आप ओवरटाइम देना। बच्चे की देखभाल में कभी ओवरटाइम की बात नहीं आती, फैक्ट्री में रोज रोज आती है। ऐसी क्या बात है? कभी कभी बच्चा बहुत भारी होता है उठाने के लिए, तो कभी पति पत्नी ये नहीं सोचते बहुत भारी है, एक्सचेंज कर लेते हैं, कोई हल्का वाला लाते हैं, इतना भारी क्यों है। या कोई व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, उसके सामने सोने के बिस्कुट के एक बहुत बड़ा ट्रंक रख दो और इतना भारी ट्रंक कि उससे उठता ही नहीं और बड़ी कठिनाई से वो उसको उठाता है, और आप उसको जाके बोलो कि मैं मदद करूं क्या, तो बोलेगा नहीं नहीं मैं उठा लूंगा। बोले नहीं नहीं वो तकलीफ हो रही है, बैक पेन हो जाएगा। बोले नहीं नहीं हो जाए, फ्रैक्चर भी हो जाए चलेगा, लेकिन मैं इसको उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का भार है। भार है लेकिन प्रेम भी है ना। क्यों? अंदर माल है, उस माल से प्रेम है। चाहे बाकी कितना भी गोलमाल हो जाए वो उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रेम है। उसी प्रकार जब हम कहीं किसी वस्तु से, व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो अनेक प्रकार की यातनाएं झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार जब इस संपूर्ण विश्व को भगवान की ही शक्ति के रूप में हम देखते हैं, स्वयं को भगवान का एक निमित्त के रूप में देखते हैं और प्रत्येक परिस्थिति को भगवान द्वारा पूर्व प्रदत्त ही देखते हैं, तो ऐसे प्रेम की चेतना में हम प्रत्येक कार्य आसानी से कर बैठते हैं और किसी भी परिस्थिति में हम विचलित नहीं होते और किसी परिस्थिति को बाधा के रूप में नहीं देखते। इसीलिए बलि महाराज कह रहे हैं, अरे वामन देव के प्रति मैं प्रेम व्यक्त करना चाहता हूं, भले ही ये भगवान स्वयं विष्णु हो, लेकिन क्योंकि ये परोक्ष रूप में मेरे समक्ष इस ब्राह्मण बटु के रूप में आए हैं, अरे मेरे गुरु शुक्राचार्य जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं इस ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति करने जा रहा हूं और जगत की कोई शक्ति मेरे इस संकल्प को क्षीण नहीं कर सकती। मैं एक ब्राह्मण को तीन पक भूमि देने के लिए वचनबद्ध हूं और इनको ये दान देकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण पखेरु क्यों न हो जाए, लेकिन मैं ये कार्य करके ही रहूंगा। अर्थात बलि महाराज के हृदय में जो संकल्प की भावना है ये बहुत ही शक्तिशाली है। जैसे ही वामन देव के उन्होंने दर्शन किए थे, बलि महाराज जो कि एक महाजन है, महान भक्त है, वामन देव के सुंदर रूप का दर्शन करने मात्र से उन्होंने यह संकल्प कर लिया था कि मैं अपना सर्वस्व इनको समर्पित करूंगा, ये विष्णु है, ये भगवान है, जीवन का यही लक्ष्य है, अरे ये मेरे जीवन की सफलता है। लेकिन फिर भी क्योंकि यहां पर अन्य ऐसे असुर तत्व तो मेरे चारों ओर घिरे हुए हैं, इसलिए परोक्ष रूप से वो कार्य कर रहे हैं और अनेक अनेक बात फुसला फुसला कर इसलिए बता रहे हैं, अन्यथा बलि महाराज ने संकल्प कर लिया, जो कुछ भी पाया हूं कृष्ण से पाया हूं, यदि कृष्ण लेने आए हैं तो देने में क्या आपत्ति है, नंगे आए थे नंगे जाना है, अरे क्या फर्क पड़ता है, इतनी चर्चा की बात क्यों हो रही है, इस प्रकार वो विचार कर रहे हैं। तो बाह्य दृष्टिकोण से प्रतीत होता है कि शुक्राचार्य उनके गुरु हैं, ये उनके शिष्य हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति के मापदंड से देखा जाए तो बलि महाराज एक उच्च स्तर के महाजन थे और शुक्राचार्य केवल एक कर्मकांडीय ब्राह्मण, वह पूरी तरह से भक्ति के तत्व को नहीं समझ पाए थे और इसलिए बलि महाराज को इस तरह से प्रस्ताव दे रहे थे, इस तरह के आदेश दे रहे थे। जब बलि महाराज ने बात नकार दी तो शुक्राचार्य को बड़ा क्रोध आया और वो बलि महाराज को श्राप देने के लिए उद्यत होते हैं और वो कहते हैं, दृढ़ पंडित मानज्ञ अस्मत् उपेक्षया मत्शासन अति गोस्तम अचिरात भ्रश्य से श्रिय। दृढ़ बड़े भट्टी हो तुम, पंडित मानी अज्ञ, अरे बलि राजन बहुत बड़ा पंडित हो गया है तू, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, शिष्य था मेरा, अब ऐसी बातें करना जैसे बहुत बड़ा पंडित हो गया हो, बड़ा वाचाल हो गया है, अज्ञ तुम तो अज्ञ हो, अल्पज्ञ हो, मच्छासन अतिग्रस्तम मेरे शासन का अतिक्रमण करने का दुस्साहस कर रहे हो, सभ्य मिथ्या अहंकार से तुम गर्वित हो गए हो और अब मैं तुमको श्राप देता हूं, अचिराध्यक्ष से श्रिय अति शीघ्र निकट भविष्य में तुम अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को खो बैठोगे। राजन ये मेरा श्राप है, ब्रह्म श्राप है या अच्युत है। तो विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि वास्तव में बलि महाराज की शुक्राचार्य स्तुति कर रहे हैं, पंडित मानी अज्ञ अर्थ, इसका अर्थ क्या है, प्रत्यक्ष अर्थ है कि जो स्वयं को पंडित मानता है बहुत बड़ा, लेकिन परोक्ष रूप से इसका अर्थ बताते हैं पंडित मान ज्ञ अर्थात बड़े बड़े पंडितगण भी जिनको मानते हैं, तो वास्तव में ये बलि महाराज की स्तुति कर रहे हैं और वो कह रहे हैं अचिरात भ्रश्य से श्रिय, बहुत शीघ्र आपके जितने ऐश्वर्य हैं सद्गुण हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इस बात को नहीं जानते कि बलि महाराज ने शुद्ध भक्ति के स्तर पर अनेक ऐश्वर्य प्राप्त किए थे और भक्ति के स्तर पर प्राप्त किए गए ऐश्वर्य नष्ट नहीं होते, वो भ्रष्ट नहीं होते, केवल सकाम कर्म से अर्जित पुण्य काल के प्रभाव से नष्ट होते हैं, परिस्थितियों के प्रभाव से उनका विनाश होता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर अर्जित किए गए भक्ति संबंधित अनेक प्रकार के सुकृति नष्ट नहीं होते। इसलिए यहां पर बलि महाराज ने भक्ति के ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं और वैसे भी इस जगत में किसी व्यक्ति को पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया जा सकता। शुक्राचार्य एक दूसरी दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वेद शास्त्रों का निर्णय यह है कि कृष्ण को संतुष्ट करो, कृष्ण गीता में कहते हैं वेद इष्ट सर्वै अहमेव वेद्यम वेदांत कृत वेद विधेय चाहम।
वेदों का निष्कर्ष है कृष्ण को संतुष्ट करो। लेकिन वास्तव में ये वेद भी गंगा नदी की तरह है।
गंगा नदी के तट पर अनेक ऐसे वृक्ष होते हैं जिस पर विषैले फल उगते हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि गंगा नदी उन विषैले फलों की उत्पत्ति का कारण है। कोई गंगा जी पर दोषारोपण नहीं कर सकता,
गंगा जी ने विषैले फल तैयार किए,
नहीं,
क्योंकि वह बीज विषैले थे, उनका पोषण हो गया।
उसी प्रकार से जब हृदय में इंद्र तृप्ति का बीज होता है तो वही वेद शास्त्र की वेगवती सरिता कई बार उस अज्ञान का पोषण कर देती है, उस भावना का पोषण कर देती है और उसके प्रभाव में आकर लोग उन्हीं वेद शास्त्रों का गलत अर्थ निकालते हैं, एक दूसरा ही निष्कर्ष पैदा करते हैं। इसलिए चाहे कितना भी प्रयास क्यों न करें, हम इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते। आप हरे कृष्ण करोगे तो कई लोग ऐसा कहेंगे कि वास्तव में वेदों का निष्कर्ष ये नहीं है, वेदों का निष्कर्ष कुछ और है। किसने आपको कहा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने? ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो? कृष्ण को मत पूजो, इनको पूजो, उनको पूजो। तो वास्तव में शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है इसे जानिए। अरे शास्त्रों का निष्कर्ष गीता में है, भागवत में है। भगवान श्रीकृष्ण ने संपूर्ण वैदिक वांग्मयों की रचना एक सुंदर फूल की तरह की है। जैसे सुंदर कुसुम गुलाब का फूल, उसके सुंदर सुंदर पंखुड़ियां होती हैं, ये सभी अनेक अनेक वेद शास्त्र हैं। लेकिन भगवान एक सुंदर भ्रमर की तरह आकर उस गुलाब के फूल से उसका रस तत्व को चुनकर दूसरों में बांट रहे हैं गीता भागवत के रूप में। और जब मधुमक्खी भ्रमर आकर फूल पर बैठता है तो फूल को नष्ट नहीं करता। ये भ्रमर में और हमने अंतर है, हमको उसमें से कुछ रस निकालना है तो उसको निचोड़ कर छोड़ते हैं, लेकिन जब भ्रमर उसमें से कुछ निकालता है तो बिना उसे किसी प्रकार से नष्ट किए। उसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण इन वैदिक वांग्मयों के सार्थकता को रखते हुए भी उसमें से जो सार तत्व है वह लेकर श्रीमद् भागवत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि वास्तव में कृष्ण ही सबके स्रोत हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस निष्कर्ष के आधार पर हम कार्य करें। तो इसलिए जब रास्ते में आप जा रहे हो और लाल सिग्नल हो और आप रुक जाओ, लेकिन वहां पुलिस वाला खड़ा हो और पुलिस वाला कहे चलो ऐसे और हाथ दिखाए, तो आप किसकी बात स्वीकार करोगे? जब पुलिस वाला कह रहा है आगे बढ़ने के लिए तो पुलिस वाले के आदेशानुसार आप चलोगे। उसी प्रकार वेद शास्त्र अनेक हैं, उसमें बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन जब महान आचार्यगण आपको एक दिशा दे रहे हैं उस दिशा में तो चलनी है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हृदय में जितनी भी इच्छाएं हैं वह प्रामाणिक गुरु के इच्छानुसार एक दिशा में लानी है। हमारे हृदय में सारी इच्छाएं लोहे की तरह हैं और सद्गुरु का आश्रय मानो चुंबक की तरह है। चुंबक के प्रभाव में आकर जितने लोहे के टुकड़े हैं वह एक दिशा में आ जाती हैं। उसी प्रकार जब हम सद्गुरु के आश्रय में आते हैं, जब श्रीला प्रभुपाद और ऐसे आचार्यों के संरक्षण में आते हैं, तो हमारी सारी इच्छाएं हृदय की भावनाएं सभी कृष्ण के चरण कमलों की ओर आश्रित हो जाती हैं। इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि वास्तव में शास्त्रों का निचोड़ क्या है और उसके आधार पर मैं जीवन जी रहा हूं कि नहीं, अन्यथा जितने लोग हैं उतनी ही बातें होंगी। जैसे एक बुरा व्यक्ति था, उसका पुत्र था, वो दोनों एक गधे को लेकर जा रहे थे। पुत्र गधे के ऊपर बैठा था, मार्केट से गए, कुछ लोग पास में आकर जोर जोर से हंसने लगे। कहने लगे, देखो तो कितना क्रूर बालक है, कैसा लड़का है, देखो लज्जा ही नहीं है, खुद राजा के समक्ष ऊपर बैठा है और बेचारा बूढ़ा पिता साथ साथ में चल रहा है, यही संस्कार पाए इसने। तो पुत्र ने सुना, कुछ लज्जित हुआ, तुरंत नीचे उतर गया, पिताजी को बिठा दिया। पिताजी गधे के ऊपर बैठ गए, फिर वो आगे चलने लगे। कुछ देर के बाद कुछ लोग और मिले, देखो तो कैसा आदमी है, मासूम लड़का है बेचारा, कोमल कोमल पैर है उसके, चल नहीं पा रहा है, उसको चला रहा है, खुद राजा की तरह ऊपर बैठा हुआ है। तो पिताजी ने विचार किया, अब क्या करूं। बोले, ठीक है चलो भाई, इसको भी अपन ऊपर ले लेते हैं। तो बच्चे को भी ऊपर बिठा लिया, बच्चा और बूढ़ा पिताजी दोनों ऊपर बैठ गए, कंधे पर चलने लगे। कुछ दूर में और लोग मिले, कहने लगे, देखो तो कितने क्रूर है बेचारा गधा, एक गधा है, दो दो लोग ऊपर सवार हैं, गधे पर क्या बीतती होगी, सोचते ही नहीं। तो बेचारा विचार के क्या करें, दोनों नीचे उतर गए और चलने लगे। कुछ लोग और मिल गए, देखो तो कैसे गधे हैं, गधे को खरीदा लेकिन साथ साथ गधे की तरह चल रहे हैं। अरे गधा ही क्यों लिया, जब गधा लिया तो इसका प्रयोग करना चाहिए। तो पिताजी इतना परेशान हुआ, गधे को लेकर सर पर लेकर चलने लगा। बोले, बहुत हुआ भाई, तो इस जगत में चाहे आप कुछ भी करो, आप सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते। आप बहुत परिश्रम करोगे, बहुत चिंता लोगे कि हाँ इनको संतुष्ट करना, इनको संतुष्ट करना, इनको संतुष्ट करना, बड़ा लिस्ट बना दो किन किन को संतुष्ट करना है, पूरा कॉपी हो जाएगा, लेकिन आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपको समझना है कि वास्तव में शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है और उसके आधार पर आप जीवन जीना है। यथाशक्ति यथासंभव जो कुछ भी आप प्रयास कर पाओ वह आपको करना है। श्रीमद् भागवत इस बात को प्रमाणित कर रही है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण की भक्ति जीवन का लक्ष्य है, कृष्णा के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करना ही जीवन का एकमात्र सार है। यदि विश्वास नहीं होता तो श्रीमद् भागवतम खोल के पढ़िए, प्रत्येक पन्ने में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक अक्षर में केवल कृष्ण का ही गुणानुवाद इसमें है। तो इसलिए बलि महाराज ने विचार किया कि तथा कथित गुरु कुल गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं वामन देव को एक स्थान मत दो, लेकिन शास्त्रों का निष्कर्ष है कि कृष्ण की सेवा होनी चाहिए, कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण होना चाहिए, मैं क्या करूं। तो गुरु साधु और शास्त्र वे तीनों आपस में मेल खाने चाहिए और तब हमारी भक्ति की गाड़ी ठीक प्रकार भली भांति चलती है। एक किलो आलू खरीदने के लिए हम इतना विचार करते हैं, दस दुकान में परखते हैं, देखते हैं, बार्गेन करते हैं, एक एक को टटोल टटोल कर देखते हैं, तब जाकर आलू लेके आते हैं। और चाहे कुछ वस्त्र हो या कोई घर हो या कोई गाड़ी हो या कोई साइकिल हो, जीवन में कोई भी वस्तु को हम प्रयोग करने से पूर्व उसको जांचते हैं, परखते हैं, पूरी तरह आश्वस्त होते हैं, फिर उसका प्रयोग करते हैं। तो फिर ऐसी गंभीरता हम आध्यात्मिक चयन में क्यों नहीं करते, ऐसी गंभीरता हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करने से पूर्व क्यों नहीं लाते? क्योंकि हमें लगता है कि ये अन्य वस्तु तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूजा पाठ आध्यात्म वगैरह तो चलता ही रहेगा, क्या फर्क पड़ता है ये हो या वो हो, कुछ तो समय होना चाहिए जो हम इसके लिए लगाएं, बस बाकी सब ठीक है। नहीं, यहां पर बलि महाराज जो कि विश्व के चक्रवर्ती सम्राट हैं, कितनी गंभीरता से अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय को साधु और शास्त्र के आधार पर कर रहे हैं। और इसलिए वर्णन आता है कि बलि महाराज ने तुरंत यह निश्चय किया कि मैं वामन देव को ये तीन पद भूमि देकर रहूंगा और उनके निश्चय करने मात्र से ही तुरंत उनकी पत्नी विंध्यावली उनके समक्ष सोने का एक विशाल जलपात्र ले आई। उस जलपात्र से बलि महाराज ने कुछ जल लिया और अपने हस्त में कुछ जल धारण करके उन्होंने वामन देव को तीन पक भूमि देने का संकल्प किया। वामन देव के चरण कमलों का पाद प्रक्षालन किया और तुरंत उन्होंने अपना संकल्प को पूर्ण किया। और जब बलि महाराज ने इस प्रकार अपना संकल्प पूरा किया, वर्णन आता है कि चारों दिशाओं में जितने देवता गण थे उन सभी की क्या प्रतिक्रिया रही। पुनः कहते हैं, तथा सुरेन्द्रम दिवि देवता गण गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारण। जितने गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारण इत्यादि थे, जितने देवतागण थे जो स्वर्ग लोकों में थे, वह सभी प्रसन्नचित हुए, प्रफुल्लित हुए और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कैसे? वर्णन आता है, तत्कर्म सर्वेपि गृणन्त आर्जवम् प्रसून वर्षै वृषु मुदान्विता। तत्कर्म सर्वेपि, जब बलि महाराज के इस संकल्प को देखा, दृढ़ निश्चय को देखा कि कैसे बलि महाराज वामन देव के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं, भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार हैं, इस बात को जानते हुए भी कि ये शत्रु पक्ष के सदस्य हैं, तत्कर्म सर्वेति गृणन्त आर्जवम्। तो ये सारे महान देवतागण ऋषि मुनि इत्यादि बलि महाराज के सरलता से, द्वैत रहित चरित्र से पूरी तरह प्रभावित हो गए। और ये वैष्णव का लक्षण है, वैष्णव का चरित्र द्वैत रहित होता है, दोगलेपन से मुक्त होता है। जो मन में उसकी बात होती है वाणी में और व्यवहार में भी वही होता है। और आज के समाज में इस प्रकार द्वैत रहित चरित्र की बड़ी आवश्यकता है, सरलता की बहुत आवश्यकता है। और ऐसी सरलता किसी कुल के ऊपर आधार नहीं होती, आधारित नहीं होती। बलि महाराज असुर कुल के हैं, लेकिन देखिए कितनी सरलता के साथ भगवान श्री विष्णु को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तत्कर्म सर्वे गृणन्त आर्जवम् प्रसून वर्षै। अनेक अनेक पुष्पों से उन्होंने उनकी पूजा की। वृषु मुदान्वित, प्रफुल्लित होकर आकाश पर से उन्होंने पुष्प वर्षा की, पुष्प वृष्टि की। तो ये द्वैत रहितता बहुत मुख्य है। बलि महाराज के मन में कोई कपट की भावना नहीं थी, वह सरल थे। उन्होंने सोच लिया, विष्णु को संतुष्ट करूंगा, वामन देव को संतुष्ट करूंगा, अपनी संपत्ति उनको सर्वस्व न्छावर कर दूंगा, बलिदान कर दूंगा। और वह करने के लिए वो तैयार थे। तो वास्तव में इस जगत में हम देखते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में हमारे मन में ये भावना आती है और जितने हम संबंध स्थापित करते हैं उसके पीछे भी एक कपट की भावना होती है, कुछ द्वैत होता है। हर परिस्थिति में हम सर्वप्रथम ये सोचते हैं, मुझे इससे क्या प्राप्त होगा, इस संबंध को स्थापित करने पर मुझे क्या मिलेगा, इस स्थान में जाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा। यदि इसके लिए मैंने ये सत्कार किया, ये परोपकार किया तो मुझे क्या मिलेगा। अर्थात कोई भी निर्णय लेने से पूर्व केवल हम यही विचार करते हैं, मेरा क्या होगा, मुझे क्या प्राप्त होगा। अर्थात प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ स्वार्थ लगा होता है और तथाकथित निस्वार्थ कार्य करते हुए भी एक सूक्ष्म रूप से स्वार्थ जुड़ा होता है, उसे कहते हैं द्वैत, सरलता का अभाव। और जो तथाकथित मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी हम स्थापित करते हैं, ऐसे मैत्री में भी ये द्वैत की भावना होती है। इसीलिए अनेक अनेक मित्रों के बीच रहते हुए भी व्यक्ति अपने आप को अकेला अनुभव करता है। और कलयुग की सबसे बड़ी एक समस्या है अकेलापन। क्यों? क्योंकि किसी पर विश्वास नहीं होता। क्यों?
क्योंकि हमारे मन में भी वैसी भावना है
और इसलिए हम विचार करते हैं जो भावना मेरे मन में है वही भावना इसके मन में भी होगी, तो ऊपर से मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन हृदय के अंदर में भावना कुछ और होती है। कब अवसर प्राप्त हो और मैं अपना उल्लू सीधा कर लूं। तीन मित्र थे, तीनों ने निश्चय किया कि हम कुछ खीर बनाएंगे। खीर बनाया, थोड़ा सा खीर बना, बहुत कम था, तो उन्होंने निर्णय लिया कि ये खीर बहुत ही कम है, तीनों व्यक्तियों में विभाजित नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे कि इसको रात भर रख देंगे और जिस व्यक्ति को रात में सबसे अच्छा स्वप्न आएगा और अगले दिन सुबह वही व्यक्ति ये पूरा खीर खा जाएगा। और तीनों विचार कर रहे थे कि ऐसे में क्या है, कैसे मैं हाथ मार लूं। विचार यही था, इसको कहते हैं कलयुग का पार्टनरशिप। बनने के पहले ही सबके विचार कुछ ऐसे ही होते हैं। तीनों सो गए, अगले दिन सुबह उठे, पता लगा, पता है क्या मैं कहां गया था रात को? मैं ब्रह्मलोक गया था। रात को ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी को मिल के आया। बताओ ऐसा स्वप्न देखा क्या आपने? दूसरे ने कहा क्या बात करते ब्रह्मलोक की, मैं शिवलोक गया था, साक्षात शिव जी के पास जाकर आया हूं। तीसरे को बोला तू कहां गया था रे? तीसरे ने कहा वास्तव में रात के स्वप्न में मेरे हनुमान जी आए थे और हनुमान जी गंभीरता से मुझे कहने लगे ऐसा मौका दिखा के खीर खाना, खीर खाता है कि नहीं? तो बाकी दोनों ने कहा ये क्या किया तूने, खाते नहीं गया? अब क्या करें? मैं बोला हनुमान जी मेरे बाकी दोस्त लोग भी हैं, हनुमान जी का खीर खाने तो मार दूंगा। अब बार बार हनुमान जी धमकी देने लगे, एक तो हनुमान जी ये मुक्का दिखा रहे थे, तो मैं विचार क्या करूं तो क्या करूं? तो बाकी दोस्त तुरंत जाके खीर का डब्बा खोला, देखा पूरा खाली था, बोले नालायक पूरा खा गया का, कम से कम हमको बुला तो लेता, हमको जगा तो देता। तो उसने कहा मैंने जगाने की कोशिश की लेकिन तुम ब्रह्मलोक गए थे, तुम शिवलोक गए थे, इसलिए आप मिले नहीं, इसलिए मैं ही खा गया। तो क्या करें, ये कलयुग का पार्टनरशिप है, ये तथाकथित मैत्री है। यहां इन तीनों के बीच खीर थी। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जीवन में या तो धन या तो सत्ता या तो कुर्सी या तो ये या तो वो सभी बीच में स्थापित करता है, उसके चारों तरफ से संबंध स्थापित होते हैं, लेकिन जितने भी पक्ष हैं वह सभी असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि कृष्ण उस संबंध का केंद्र बिंदु नहीं। यहां बलि महाराज असुरी समाज में रहते हुए भी कृष्ण को विष्णु को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना रहे हैं। ये एक महान प्रेरणादायक प्रसंग है, गौर कीजिए। इसलिए वो कह रहे हैं यहां पर प्रसून वर्षई अभिवर शितम होगा, प्रसन्नचित होकर वह सभी वामन देव जी के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। तब वामन देव हरे कृष्ण, तब सर वामन देव अब इस अवस्था में जो पटु का रूप धारण किए हैं, अब धीरे धीरे अपने रूप को परिवर्तित करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अब तक वामन देव का रूप एक छोटे से बाल ब्रह्मचारी के रूप में था, अब उपस्थित सभा के देखते देखते वामन देव अपने रूप को विस्तारित करते हैं। और वर्णन आता है कि वामन देव उन सभी के समक्ष अपने देह को बढ़ाते हुए संपूर्ण पृथ्वी को अपने अंदर समा गए। पृथ्वी और अन्य जितने भी लोक, समुद्र और नदियां, आकाश और दिशाएं, बड़े बड़े ऋषिगण, साधुगण, देवतागण, मनुष्य, पशु, पक्षी, वह सभी उनके उस विस्तारित देह के भीतर प्रतीत होने लगे। बलि महाराज, उनके पुरोहित, उनके आचार्य, उनके जितने भी गुरुजन थे, उन सभी ने वामन देव के उस विराट रूप का दर्शन किया जो षड ऐश्वर्यों से युक्त था। उन सभी के समक्ष उन्होंने देखा कि वामन देव का उस विस्तारित रूप में सारे स्थूल तत्व थे, सारे सूक्ष्म तत्व थे, सारी इंद्रियां दृष्टिगोचर होने लगी, इंद्र के विषय वस्तु वहां उत्पन्न थे, प्रकृति के गुणों के अधीन जितने कर्म थे उनके फल और विविध प्रकार के जीव वहां दृष्टिगोचर होने लगे। भगवान के चरण कमलों के तलवों पर रखाकर भगवान के चरणों में पृथ्वी, उनकी पंडलियों में पर्वत और उनके घुटनों में पक्षी और फिर उसके ऊपर वायुदेव प्रतीत होने लगे। उनके वस्त्र के भीतर संध्या, उनके गुप्तांग में प्रजापति और उसके पश्चात उनके वक्षस्थल में तारा समूह, उनकी नाभि में विविध प्रकार की वायु और उनके कटिक प्रदेश में बलि महाराज स्वयं अपने विश्वस्त पार्षदों के साथ उपस्थित थे। उनके कमर के चारों तरफ सात प्रकार के समुद्र थे। सभी के सामने सामने वामन देव अपने रूप को विस्तारित किए जा रहे थे और उस विराट रूप का दर्शन सभी कर रहे थे। वामन देव के सर के ऊपर जो बाल थे उसमें मेघ समूह, उनके देह के सभी बालों के ऊपर विविध प्रकार की औषधियां और लताएं, उनके सर पर देवलोक, उनके मस्तक पर साक्षात क्रोध, उनकी भ्रुवों पर विधि विधान, उनकी पलकों पर दिन और रात, उनकी नेत्र पर सूर्य और चंद्र विद्यमान थे, उनके कर्णों के भीतर हर प्रकार की दिशाएं, उनकी नासिका के भीतर वायु, उनके जल पर वरुण देव, उनके मुख के भीतर अग्नि, उनके जिह्वा पर होंठ, उनके स्पर्श में काने छाये प्रतीत हो रहे थे, उनके कंठ पर वेद और उनके मुख से ध्वनि में वेद मंत्र उच्चारण हुआ रहा, उनके हृदय के भीतर धर्म के सिद्धांत, उनके वक्षस्थल पर सत्य और हर प्रकार का माधुर्य की प्रतिकरण हो रही थी। और देखा कि मन में ब्रह्मा जी, बुद्धि में ब्रह्मा जी और अन्य देवतागण और मन में चंद्रदेव स्वयं प्रतीत हो रहे थे। वामन देव अपने भुजाओं में इंद्रदेव और अन्य देवताओं को व्यक्त कर रहे थे। उनके देह की नाड़ियों में विभिन्न प्रकार की सरिताएं और उनके नखाग्र में बड़े बड़े पत्थर दीख पड़ रहे थे। उनके वीर में समस्त जल राशि उत्पन्न हो रही थी और तब उनके पार्श्व भाग में अधर्म और उनकी छाया में मृत्यु और उनके चरणों में सारे यज्ञ अनुष्ठान और जितने जड़ चेतन जीव थे वो वामन देव के संपूर्ण देह पर व्याप्त थे। इस प्रकार वामन देव के उस विराट रूप को देखकर, विस्तारित रूप को देखकर चारों दिशाओं में जितने जीव थे पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए। बलि महाराज और उनके साथ साथ जितने असुरगण थे वह पूरी तरह से विस्मित हो गए और फिर उन्होंने देखा कि भगवान का सुदर्शन चक्र देदीप्यमान हो रहा है और तब भगवान के सुदर्शन चक्र के साथ साथ भगवान का धनुष कोलाहल पूर्ण ध्वनि करता हुआ उनके हृदय को खदेड़ रहा था। उनके हृदय में महान विषाद की भावना जागृत हो रही थी और तब भगवान श्री वामन देव के इस रूप का दर्शन करने के लिए और उनकी स्तुति करने के लिए भगवान के अनेक पार्षद वहां उपस्थित हो गए और उन पार्षदों में प्रमुख थे भगवान के कौमोदकी नाम के गदा, भगवान के पांचजन्य नाम का शंख और साथ साथ विद्याधर नाम की तलवार और अनेक चंद्रमाओं से अलंकृत ढाल और भगवान के सारे पार्षद वहां उपस्थित होकर भगवान की स्तुतियां कर रहे थे। भगवान अपने सुंदर रूप में सबको अपना दर्शन दे रहे थे और इस रूप को देखकर सारे देवतागण और भगवान के जितने पार्षद थे प्रफुल्लित हो रहे थे और असुरगण सभी हतोत्साहित हो रहे थे, निराश हो रहे थे। ऐसी अवस्था में जब भगवान वामन देव अपने रूप को विस्तारित करते चले गए तो अपने प्रथम पग में उन्होंने पृथ्वी और नीचे लोगों को पूरी तरह घेर लिया, अपने देह के भीतर उन्होंने आकाश को समा लिया और फिर अपने भुजाओं में उन्होंने चारों दिशाओं को व्याप्त कर दिया और तब फिर भगवान ने अपने दूसरे पग में ऊर्ध्व लोकों को भी पूरी तरह से समा लिया। अर्थात भगवान के केवल दो पग रखने पर जगत की सारी शक्ति उनके अधीन हो गई और संपूर्ण जगत में रंच मात्र स्थान भी नहीं बचा भगवान के तीसरे पद के लिए। ऐसी अवस्था में जब भगवान के चरण कमल साक्षात ब्रह्मलोक तक पहुंच गए और ब्रह्मा जी के भी तेज को तिरस्कृत करने लगे, चुनौती देने लगे, ब्रह्मा जी स्वयं अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों के साथ वहां उपस्थित हुए और भगवान श्री वामन देव के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए वह अपने कमंडलों में कुछ जल लेकर आ गए। और तब ब्रह्मा जी और महान ऋषिगणों ने मिलकर श्री वामन देव के चरण कमलों की पूजा की और इसलिए वर्णन आता है,
केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशव धृता वामन रूपा
सब
हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश।